ज्ञानज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतानुभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे सर्वप्रथम में अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मी कलीला और प्रवेशम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री शरण कमलों में कोटि कोटि बार चर्चा नंदक प्रगति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात इस कथामृत का आयोजन करने वाले बांके बिहारी मित्र मंडल सनातन धर्म सभा हमारे राधा गोविंद गौड़िया मठ के अध्यक्ष और विशेष करके मीडिया जो प्रतिदिन इस कथा के लिए पेपरों में समाचार पत्रों में समाचार देती थी उन दैनिक जागरण और हिंदुस्तान तथा पंजाब केसरी इत्यादि के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी मैं विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। यदि श्रोता ही नहीं रहे तो वक्ता क्या कर लेगा, इसलिए इसका मुख्य विषय है श्रोताओं का। मैं श्रोताओं का भी पूरी श्रद्धा के साथ में अभिनंदन कर रहा हूं जो प्रतिदिन इतनी संख्या में 7-8 हजार की संख्या में प्रतिदिन कथा में श्रोता की संख्या बढ़ती जाती थी, उन्हों का उत्साह भी इसी तरह से बढ़ता जाता था। और मैं समझता हूँ कि बाकी बिहारी मंडल इत्यादि सभी का भी इसी तरह से उत्साह बढ़ता जाता है। हमारे परिचय देने वाले वक्ता महोदय ने कहा कि आज के पैंडल में ये अंतिम कथा है किंतु इसका क्रम चलता रहेगा। मैं भी इसके वार्षिक समारोह में जब ये लोग बुलाएंगे मैं श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी कथाओं का अंत दूंगा। मैं यहाँ आकर इतनी व्यवस्थित रूप में दिल्ली के अंदर या और जगहों में भी इतनी व्यवस्थित सुंदर रूप में कोई सभा नहीं देखी। मैं समझता हूं कि आगे इसे और भी अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में और बड़े पैंडल में हरी कथा हो। अब मैं हरी कथा आरंभ करता हूं। कृष्ण कथा अमृत 4 दिन में 4 दिन का समय मिला हरी कथा का, 1 दिन तो नगर संकीर्तन में गया। 4 दिन में कृष्ण की अनंत कथाएं जिसको कृष्ण स्वयं भी अपने करोड़ों करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते उसको 4 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं और वो भी 1-1 घंटे में। अंततः 7 दिन का भी समय हो और सवेरे शाम कम से कम तो 5 घंटा 6 घंटे का समय रहे तो कुछ संक्षेप में वर्णन किया जा सकता। इसलिए हमने श्रीमद् भागवत के सार कथाओं का ही मैंने आश्रय लिया और उन्हीं को प्रवेशन करने की चेष्टा की। भक्ति का की परिभाषा मैंने बतलाई, ये भक्ति किसको कहते हैं और कैसे उस भक्ति का आचरण करना चाहिए संक्षेप में बतलाया। उसी भक्ति का परिचय देते समय हमने बतलाया ध्रुव की भक्ति उत्तमा भक्ति में नहीं है, संसारी कामनाओं को रख करके करेंगे तो नहीं है। प्रहलाद महाराज जी की भक्ति सर्वांग सुंदर है, कोई भी जातिक कामना नहीं उसमें है, किंतु उसमें सेवा प्रति नहीं देखी जाती। उनके ब्रह्म को भूख नहीं लगती, वो सर्वव्यापी है, उनको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज की कोई सेवा नहीं जाती। बरिक्ष महाराज जी की सेवा वृत्ति देखी जाती है, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ हनुमान जी के समय में संबंध में बतलाया, सब समय भगवान की सेवा में रहते हैं। एक समय भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी ने मीटिंग की और कहा ये बंदर हम लोगों को सेवा का कोई अवकाश नहीं देता, ये दिन भर रात भर यही सेवा करता है, क्यों ना हम लोग श्री रामचंद्र जी की सेवाओं को 4 आदमी दिन रात मिला करके बांट दें। रात की सेवा सीता जी करेंगी और दिन को भी बांट दिया, कोई चमट डुलाएगा, कोई पंखा डुलाएगा, कोई कुछ करेगा, इस तरह से सारी सेवाएं बांट दी। हनुमान बोले भैया मैं सेवा नहीं पाने से तो मर जाऊंगा, हमें कुछ भी सेवा दे, कोई भी सेवा अवशिष्ट नहीं है, कोई सेवा नहीं है, बहुत दिन तुमने सेवा की अब हम लोग सेवा करें। अरे भाई देखो हमको ऐसी कोई सेवा दो जो तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए एक सेवा हमको ये दे दो, भगवान कभी राम को जब भाई आए तो मैं चूतू बजा दिया था, उन्होंने कहा ये ठीक है राम को तो कभी जम्भाई आती नहीं है, भगवान उनको क्या जम्भाई आएगी, कभी थकते नहीं है जम्भाई, आएगी नहीं, अच्छा ठीक है ये तो, किंतु घर में घुस करके नहीं बाहर में। हनुमान जी घर के बाहर में उन्होंने तो वादा किया था कि जब वो जम्भाई लेंगे तब चुटकी बजाएगी बजाएगी, किंतु राम से उनको बाहर में बैठा दिया गया तो वो चुटकी बजाने लगे, उसी समय बोले कि कब आ जाए वो पता, उनको तो घर के भीतर आने तो देते नहीं, इसलिए मैं चुटकी बजाता हूँ। जब ही चुटकी बजाना किया राम का वो जम्भाई आ गया, दिन रात जम्भाई सारी सेवाएं बंद, खाना पीना बंद, टहलना बंद, इधर उधर का चामर टामर क्या उनको अच्छा लगे, दिन रात जम्भाई जम्भाई आ रही, हनुमान जी बजाते चले जा रहे। अंत में राम ने सबको बुलाया, लाकर के देखो भाई हनुमान को कोई इसके अनुरूप कोई सेवा दे दो और नहीं तो ये कोई भी सेवा लेने नहीं देगा हमें। अंत में उनको सेवा दी गई जैसे पहले तो। हनुमान जी बिना सेवा के उनकी करोड़ों करोड़ों गाथाएं, किंतु हाँ इसमें थोड़ी सी कमी है, वो क्या कमी, वे राम का आलिंगन नहीं कर सकते, राम के कंधे पर बैठ नहीं सकते, कोई मीठी चीज हो उसको जूठा राम को नहीं दे सकते हैं, मर्यादा के अंदर न रह करके सेवा करेंगे, इसलिए इनकी अपेक्षा पांडव लोग बहुत श्रेष्ठ, कैसे पांडव लोग श्रेष्ठ अभी माधव महाराज जी उपस्थित करेंगे। संक्षेप में बोलो 15 मिनट से अधिक में
ज्ञानतीरांधस्य वेनांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सबसे पहले गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रतिज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित दंडिपादगण, वैष्णव वैष्णवीगण, सत्यवृंद व मातृमंडली को यथाजथ अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया कि हनुमान में कमी है और उससे अधिक पांडव में है। किस क्या चीज है? कृष्ण में प्रीति। पांडव ऐसे क्या चीज है जिसके कारण पांडवों को हनुमान से श्रेष्ठ बताया गया? हनुमान जी राम के सेवक हैं, रामचंद्र जी प्रभु हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह भाव जाए जनु भोरे। क्या सपनों में भी यह भाव न जाए कि रामचंद्र जी मेरे प्रभु हैं, मैं इनका सेवक हूं। अब आते हैं हम पांडवों में। पांडवों के साथ कृष्ण का क्या संबंध है? कृष्ण जी और अर्जुन आदि जो पंच पांडव हैं, आपस में लोग कुपेरा ममेरा भाई हैं। सेवक और प्रभु से संबंध है, ये संबंध भी गाढ़ा है। और क्या है? अर्जुन जी कृष्ण के साला लगते हैं, कृष्ण अर्जुन के साला लगते हैं, और कृष्ण अर्जुन कृष्ण के भग्नीपति लगते हैं, बहन ही लगते हैं। कैसे? एक समय द्वारका में प्रचार हो गया कि बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, सब जाकर उनसे आशीर्वाद लो, इसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है वो क्या चीज है? बलदेव तो की इच्छा है अपनी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो, लेकिन वसुदेव महाराज, देवकी देवी और जो कृष्ण के पात्रणिया एवं उनके कृष्ण तक चाहते हैं, नहीं अर्जुन से हो। चूंकि बलदेव प्रभु बड़े भाई हैं, कोई उनके डर के मारे कुछ कह नहीं सकते, सब चुपचाप रहते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ऐसे नहीं होगा, तुम तिरंग सन्यासी वेश में द्वारका में आ जाओ। क्यों? उनके परामर्श दिया, अर्जुन ऐसे आ गए। अब सब जा रहे दर्शन करने के लिए, सब प्रणाम कर रहे हैं, और अर्जुन क्या कर रहे हैं? छत्म वेश में मंगलम अस्तु मंगलम भवतु सौभाग्यवती भवई कर रहे हैं। जब सुभद्रा देवी को यह बात पता चला कि कोई बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद लेने से मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, सुभद्रा देवी भी सज धज करके आई दर्शन के लिए। इसमें पहले से बता दिया था, दर्शन करके जब लौट रही थी, अर्जुन को पकड़ लिया, रथ में बैठा लिया। अर्जुन कहां रहे तिरंग वेश, क्या किया? गंडीव धनुष ले लिया, खड़े हो गए सबका सामना करने के लिए। सुभद्रा देवी क्या किया? रथ के भाग दौड़ अपने हाथ में ले ली, अब चल रहे रथ करके। पूरा द्वारका में हल्ला मच गया कि ये सन्यासी नहीं ढोंगी था, ये अर्जुन था, सुभद्रा को हरण करके ले जा रहे हैं। बलदेव प्रभु को रहा नहीं गया, चतुरंग ने सेना को आदेश दे दिया, आज अर्जुन को हम मार के छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको। सबको पता था, सब सेना तैयार हो गए, सेनाएं तैयार हो गई, और कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं। दाऊ भाई आके कहा, अरे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन को अर्जुन भाला के ले जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, क्या क्या हुआ क्या हुआ? हम किसको जानते ही नहीं। अरे देखा नहीं, सुभद्रा को अर्जुन हरण करके ले जा रहा है। तब कृष्ण ने बताया, भैया ये बुरा क्या किया? क्षत्रिय का धर्म है, जिनके बहु में बल है वैसे ले जा सकते हैं। मैं जब रुक्मिणी का हरण किया था, आप जिन तो मुझे मदद किया था, हर्जा क्या है? नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, सब सेना जा रही है, मैं भी हल मुसल लेके जा रहा हूँ, अर्जुन को मार के छोड़ूंगा। ये छद्म वेश में आकर के मेरी बहन को ले जा रहा है। और देखो चल पड़े, भैया देखो तो सही,
रथ कौन चला रहा है? अर्जुन तो नहीं, सुभद्रा चला रही है। मुझे तो लगता है अर्जुन सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने ही अर्जुन का हरण किया। अच्छा भैया मेरे आपसे विनती है, जब दोनों के मन मिल गया, शांत हो ही गया, केवल फरमाने की बाकी है। आप अगर अर्जुन को मारेंगे, आप क्या चाहेंगे आपके बहन विधवा बन गए सारा जिंदगी भर? ये कौन सा विचार है? बताया क्यों नहीं? सब उनको बुलाया, बहुत घटा करके शादी की गई। ऐसे अर्जुन के साथ कृष्ण का संबंध है, हनुमान जी से ऐसा संबंध राम जी के नहीं है। और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय नारद ऋषि घूमते घूमते पहुंचे तारका में। नारद ऋषि क्या करते हैं? नारद ऋषि बाजाए बिना राधिका रमन नाम में, और कभी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण पहुंचे। सब लोग का अवगत किया, सीधा चले गए रुक्मिणी के महल में। जाके क्या देखा, एक ही बिस्तरा पर कृष्ण और अर्जुन दोनों लेटे हुए हैं। कृष्ण के माथा पूर्व दिशा की ओर और अर्जुन के माथा पश्चिम दिशा की ओर। कृष्ण के पैर अर्जुन के छाती होकर के उधर गया, उसमें कृष्ण के पैर को द्रौपदी देवी, सुभद्रा देवी और सब लोग चमक धुला रहे हैं, और अर्जुन के पैर कृष्ण को छाती होकर के गया दूसरी ओर। इधर रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, लक्ष्मण, नग्नजीति सब मिलकर चमक धुला रहे हैं, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण निकल रहे हैं। देख करके नारद जी अवाक हो गए, ये कैसे भक्त को भी दिखाई नहीं, देखो तो कैसी प्रीति, इस कृष्ण स्वयं भगवान है ये भी उनको भान नहीं है। देखो उनकी छाती के ऊपर से पैर जा रहा है, जो कृष्ण के पात्राणियां है वो चमक ढुला रहे हैं, चमक ढुला रही है, अब कृष्ण 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 निकल रहा है। तो भूल गए श्रीमन नारायण नारायण, अब गा रहे हैं अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण। ऐसे अर्जुन के साथ प्रीति। और उदाहरण दे रहा हूँ भीम जी का या युधिष्ठिर महाराज जी का, कैसे प्रीति उन लोगों के साथ, जो प्रीति अर्जुन के लिए संभव नहीं है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिज्ञा किया कि मुझे कोई हरा, हमारे कोई हरा देगा मुझको तो मैं हार मान जाऊंगा। कृष्ण ने बताया, बड़ा भाई ये क्या किया आपने, राजा राजा में युद्ध होता है ये बात ठीक है, आपको ऐसे प्रतिज्ञा करना ठीक नहीं हुआ, तो एक काम करें आप बता दीजिए मेरा राजा भीम है। तो राजा राजा में युद्ध होगा, युधिष्ठिर महाराज ऐलान कर दिया कि मेरा राजा, हम लोगों का राजा भीम है। युधिष्ठिर महाराज का एक वरदान था, वो कभी अपने कनिष्ठ को प्रणाम करेंगे और तुरंत मर जाएगा। तो दुर्योधन ने सोचा बहुत अच्छा ही हुआ, तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा, युधिष्ठिर प्रणाम करते ही मर जाएगा, तो मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, और क्या किया जाए। कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर महाराज, देखो भैया मैं भीम के पीछे रहूंगा, तुम मेरे उद्देश्य से प्रणाम करना, भीम के लिए नहीं तो प्रणाम मैं ले लूंगा, कोई चिंता नहीं। और दूसरा मनीमन मल कला खा रहा है, तो खाने तो क्या आता जाता है, ठीक है। दुर्योधन ने बोला ठीक है, जो राजा है प्रजाओं का कर्तव्य राजा को प्रणाम करना, तो उनको प्रणाम करे। युधिष्ठिर महाराज जी आए, कृष्ण के उद्देश्य से मनीमन कृष्णाय नमः करके प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों का विजय हुई। जब अभी उन को मारा था सप्तरथी मिल करके, जगदग्न को मारा था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया आज सूर्यास्त के पहले मैं जरूर जयदत्त मारूंगा, नहीं तो मैं खुद आग में अपने को आहुति दे दूंगा। ये जब सोचा तो क्या किया जाए, भीष्म पितामह ने ऐसे चक्र को बनाया, उनको भेद करके आ ही नहीं सकते अंदर, और चिता बनाया गया और अर्जुन अब मरेंगे। उसने बताया, अरे अर्जुन मरना ही है तो वीर के भांति मरो, ऐसे काय के भांति क्यों जा रहे हो, कांडी धनुष साथ में लो, जाके अपनी प्रदक्षिणा करके उसमें कूद जाओ। ठीक है, या तीर धनुष, लेकर और परिक्रमा करने लगे। अब आदमी खुद नहीं बालक थे, हुआ क्या, कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक करके रखा था, चक्र हटा लिया, जेहू हटाया क्या देखा, सूर्य चमक रहा है। और उठा दुर्योधन ने पुकार दिया, देखो तुम्हारा शत्रु मर रहा है, आओ जरा आनंद कर लो, हंस लो, सामने आ जाओ। आए तो बताया कृष्ण ने, अरे अर्जुन क्या देख रहे हो, शत्रु तुम्हारे सामने खड़े हैं, मारो इसको। अर्जुन सोच रहा, ओहो क्षत्रिय का धर्म है जो अस्त्र धारण किए नहीं तो बार नहीं करना चाहिए, इसमें क्या सोच रहा है अर्जुन, को जल्दी मारो उनको। तो बताया इनका शस्त्र नहीं है, और लोग कह रहे दुर्योधन और सब करेंगे अन्ना जीता है। तब कृष्ण ने कहा कि अभी उन लोग को मारा था क्या, ये नया युद्ध था, एक के साथ एक युद्ध करेगा, साथ मिलके मारा, ये क्या नया हुआ था, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, ये क्या नया हुआ था, जब भीम को लाड्डू खिला था 20 लाड्डू, ये क्या नया था, एक एक करके उदाहरण दिया। अरे देख क्या माता और आतताई को, आतताई बधे न दोष मार अर्जुन मारा, ऐसे कृष्ण ऐसे कुछ काम नहीं है जो अर्जुन के लिए भीम के लिए पंच पांडव के लिए नहीं किया हो। आखिर तक ये युद्ध में अर्जुन का रथ भी हटा, अर्जुन के घोड़े को पानी पिलाया, उनको पैर पर मसाज किया, ऐसे जो राम के लिए हनुमान के संबंध कभी भी संभव नहीं है। इतने संबंध इतने प्रीति, इसके कारण हनुमान जी से अर्जुन या पांडव बहुत श्रेष्ठ है, तो हनुमान जी सपना भी नहीं सोचते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर बैठने को रक्षा करने के लिए, और सब लोग गुरु जी के श्रीमुख से सम्मान करने के लिए लायक है, और ये समय न लेते हुए अपने वक्त को विराम देता हूँ।
आप लोगों ने सुना पांडवों को, कृष्ण ने तो अपने पांडवों की सेवा की ही, उनके घोड़ों को धोए, उनको पानी पिलाया, उनके साथ ही नहीं, और हनुमान जी को भी कहा कि तू सब समय इनके ध्वजा पर रहना, और यदि विपक्ष के वीर बाण ऐसे मारते हैं जो उसमें पाटिल मर सकते हैं, तो उनके रथ को पृथ्वी के अंदर में घुसा देना, और सब प्रकार से गर्जन करना जिससे कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र निकल जाए। तो ऐसी सेवा करते थे, हनुमान जी को भी अर्जुन का सेवक बनना पड़ा, कृष्ण तो बने ही, इसलिए पांडवों की बहुत अधिक। किंतु एक बात है, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध से मुड़ गए, जैसे भीख मांग करके खाना उचित है, किंतु क्षत्रियों का लोगों से युद्ध करना नहीं, ये तो हमारे भीष्म पितामह जी, हमारे भाई बंधु साले सभी ये लोग हैं, इनको मैं नहीं मार सकता। तो कृष्ण ने उनको विश्व रूप दिखलाया, ये मरे हुए निमित्त मात्र भाव सब दशांति, दांतों खले देखा जी, असंख्य विश्व ब्रह्मांड के देवता से गंधर्व से लेकर के सारी सेनाएं भीष्म पितामह इत्यादि उनके मुख में हैं, और विराट विश्व रूप के। उस समय अर्जुन बोले हाथ जोड़ करके, प्रभो मैंने आपको सखा बहुत कहा है, आपको साला कहा है, अपने घोड़े धुलवाए हैं, साथी किया है, ये मैंने बहुत अन्याय किया, इसलिए आप क्षमा करें, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अर्जुन का वो जो सख्य भाव था वो भी खत्म हो गया एक विश्व रूप के देखने से, इसलिए ये थोड़ी सी कमी है। इसलिए प्रहलाद भीष्म पितामह इत्यादि को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। एक चीज समझेंगे, ज्ञानी में और ज्ञानी भक्त में अंतर है। ज्ञानी तो वो है जो अपने को ही सर्वं खलोमिदं ब्रह्म सोहम इत्यादि तत्त्वमसि, मैं ही वही हूं, ये भक्ति के संपूर्ण विरोधी है। और दूसरा ज्ञानी भक्त जो भगवान को भगवान जानते हैं, उनके ऐश्वर्यमयी भक्ति करते हैं, उनके प्रभु को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो थकते नहीं, सर्वव्यापी उनके प्रभु हैं, ये लोग ज्ञानी भक्त, इनकी अपेक्षा इनको कहा जाता है ज्ञानी भक्त। और इनसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी हैं, वो शुद्ध भक्त है, उनकी अपेक्षा हनुमान जी प्रेमी भक्त है, उनके अपेक्षा पांडव लोग प्रेम पर भक्त है, प्रेम पर, और उनसे भी श्रेष्ठ उद्धव जी कृष्ण के सखा है, मित्र है, बंधु है, भाई है, सेनापति है, सलाहकार है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो नहीं है। सारे जादों में भी उद्धव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, कृष्ण उनको अपना प्रिय बतलाया है। लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है, संकर्षण अपने भाई प्रिय नहीं है, ब्रह्मा अपने पुत्र नहीं है, और हरिहर एक आत्मा शंकर जी ने मेरे प्रिय ने जितने की उद्धव जी प्रिय है, ये उद्धव जी से इनको प्रेमातुर भक्त कहा जाता है, क्रम से एक से दूसरे श्रेष्ठ है। ये उद्धव जी ऐसे भगवान के प्रिय है जहाँ कृष्ण को स्वयं जाना होता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। यदि ब्रज में जाना हुआ, जबकि ब्रज छोड़ करके वे मथुरा में आ गए और संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा लेकर के लौटे, ब्रज की तरफ में देख करके बड़े दुखी हुए। उनके पिताजी उनके विरह में रो रहे हैं, ब्रजवासी गायें तृण नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, मयूर और बोलते नृत्य नहीं करते, कोयल कुहू कुहू नहीं करती, सारा ब्रजवास श्मशान की भांति दिख रहा है, पिता और माता दोनों अंधे हो गए हैं, और सबसे प्यारी जो गोपियां हैं जो उनके बिना रह नहीं सकती, उनकी दशा का वर्णन करना बहुत कठिन। कैसी प्यारी है मदरत चित्ता, जिन्होंने अपने चित्त को मेरे अंदर में रख दिया इसलिए जीवित है, नहीं तो वो कभी मर जाती। कृष्ण ने गीता में बतलाया है, मन मना भव मद भक्तो मदयादि मां नमस्कारो, मन मना भव, यही इसी का तात्पर्य है मदगत चित्त। मन मना भव माने क्या, अपने मन को मेरे मन में दे दो। कैसे होगा, जब मन नहीं रहेगा तो आदमी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, मन ही नहीं है, इसीलिए गोपियां कृष्ण के प्रिय में गिरी तरह सकी, नहीं तो वह रख नहीं सकती, कभी की मर जाती, क्योंकि उनका प्राण कृष्ण के अंदर। मन भाव मन मना भाव का एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। कोई नवेली ब्रज की नंदगांव में ब्याही, कृष्ण का नाम तो सुना था, कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, जब वो आई तो कृष्ण की दर्शन की बड़ी प्रबल लालसा उठी। कृष्ण सवेरे गोचारण में कोटि कोटि गायों को लेकर और कोटि कोटि सखाओं को लेकर के एक वन से दूसरे वन में बांसुरी और सिंगार इत्यादि बजाते मिल जाते हैं। ठीक उसी समय में जिसमें कृष्ण गोचारण करने के लिए हमारी बड़ी चौड़ी गली से निकलेंगे, उस समय उनका दर्शन करें। दूसरे दिन सवेरे कृष्ण गोचारण के लिए आए, बंसी बजी और वो भी जाने के लिए तैयार हुई, उसकी सास ने कहा कि कहां जा रहे, तो कृष्ण का दर्शन कर ले, मत जाओ, काला सर्प है काट देगा उसका पीस, जीवन भर नहीं उतरेगा। वो बोली तो तुम्हारी बेटी किस लिए जा रही है और तुम क्यों जा रही हो, और नगर की सारी महिलाएं यहाँ तक कि अंधे भी लोग जा रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, मैं ही बहन की मैं तो नहीं रह सकता, भले ही घर से आप निकाल दें। वो आकर के दरवाजे के पास में खड़ी हो गई और कृष्ण को एक तक देखने लगी। कृष्ण समझ गए एक बछड़े की पूंछ थोड़ी सी छूटी और बछड़ा कुत्ता हुआ ठीक वहीं पर पहुंचा। कृष्ण भी उसी के बहाने वहां पर पहुंचे, अपनी बांसुरी ली और उसके थोड़ी में लगा दिया और उसका चित्त ले करके और अब वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी है, मन तो है नहीं, मदगत प्राणा मन मना भव। कृष्ण तो चले गए, धूल उठी थी वो भी खत्म हो गई, गाय चली गई, किंतु वो दरवाजे पर खड़ी रही सो खड़ी ही रही। उसकी सास ने आया, क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि सात काला सात काटेगा तू दसेगा बीस नहीं उतरेगा, तुम्हारी नहीं, चल घर ले गई। जैसे घर से जाओ मटके ले आओ और दही का मंथन करो। तो वो मन तो था नहीं, क्या मटके में है नहीं है देखा नहीं, एक मटका लाया उसको सरसों रखा था, सरसों जानते हैं, सरसों रखा था और लेकर के उसका मंथन करने लगी। उसके साथ में देखा जी क्या मंथन कर रही, सरसों दही तो है नहीं, कभी इसका वो उतरा नहीं, बीज नहीं उतरा नहीं। अच्छा एक बात करो, गांव से बाहर में कुआं है वहां से पानी लाओ, जैसे रोज लाती है, और एक बच्चा हाथ में दे दिया, घड़े के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर में घड़ा, यहाँ पर एक घड़ा, यहाँ घड़ा, यहाँ घड़ा, और एक डोल बाल्टी भी उसको दे दिया, जाओ पानी लाओ। ब्रज में ऐसा रिवाज है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, पानी खारा, वचन गारी, यह है वृंदावन की और मथुरा की ये बलिदारी। तो वो गई, मन तो था नहीं, कुएं पर पहुंची अभ्यास बस्त, बच्चे को रख दिया, घड़े को रख दिया और रस्सी ली और उसका फंदा बनाया, वो घड़े में न डाल करके बच्चे के गले में डाल दिया। अब वो कुएं में देने वाली थी तो कुछ गोपियों ने कहा रे इसको भूत लग गया, अपने बच्चे को लेकर के दे रही है। दूसरी बोली ये भूत नहीं नंद का पूत लगा है। तो मन था नहीं, फिर किसी प्रकार से उनको पकड़ करके घर में लाया गया, किंतु वो बीस उतरने का नहीं, ये है मन माना भाव। तो गोपियों का ऐसा चित्त है, कृष्ण कह रहे हैं जल्दी से जाओ, हमारे वीर में तड़पते हुए मरते हुए हमारे माता पिताजी को सांत्वना दो और ऐसी गोपियों को भी सांत्वना देना। देखो एक बात करना, अपने बातों से बुद्धि से सांत्वना मत देना। मैं तुमको जो संदेश दे रहा हूं कह रहा हूं वही कहना, मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं इससे संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, इससे न हो तो इस बात से सांत्वना देना, इससे न हो तो इससे, इस तरह से बहुत बातों को उनकी झोली में भर दी और वे उद्धव को सोने के रथ में बैठा कर और ब्रज को भेजा। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हैं, कृष्ण ने अपना अंगरखा और सब वस्त्र बनमाला सब अपने अंगों के गंध से भरी हुई ये सभी कुछ उद्धव को पहना दिया और कंस का सोने का रथ था ऊपर में बैठा दिया और जब तक उद्धव देखे तब तक लौटे नहीं उद्धव जी गए। अब उद्धव जी क्या गए वहां और किस प्रकार से सांत्वना दी, ना उनकी विरह की ज्वाला को और बढ़ा दिया, ये कृष्ण भी नहीं स्थिर कर सके, उद्धव क्या स्थिर करेंगे। तो इसके संबंध में संक्षेप में 15 मिनट हमारे भक्ति वेदांत श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ उपस्थित करेंगे अपनी कथा 15-20 मिनट।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो सर्वप्रथम पर विराजमान गुरुपाद पद्म में असंख्य कोटि जन्म प्रणति ज्ञापन करता। तदनंतर उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादजन तथा पूजनीय वैष्णव गुरुओं समस्त सज्जनों विद्वानों वाहनों माताएं बहनों सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। अभी अभी श्री गुरु जी ने आज्ञा की है श्रीमद् भागवत के अत्यंत गूढ़ तथा मार्मिक प्रसंग है जो कि उद्धव जी का प्रसंग है। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर वे रस के आस्वादक हैं। रस का आस्वादन दो प्रकार से होता है, एक मिलन दूसरा विरह। मिलन में तो ब्रजलीला के द्वारा ही हुआ है, जहाँ पर भगवान ने रास रचाया, कुंजों में कीड़ाएं की हैं, अपने कैशोर वयस को सफल किया है। अब कृष्ण जब ब्रज से मथुरा को गए और मथुरा से द्वारका को चले, उस समय ब्रजगोपियों के जो चरम विरह विप्रलंब है, उस विरह विप्रलंब में जो महान भावों की परिस्थिति आई है, जिसे समझाने के लिए से उद्धव जी को चयन किया, जो कि बुद्धि में सबसे बड़े और बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी गुणी हैं, वृष्णियों के प्रवर मंत्री हैं, जो किसी प्रकार से कम नहीं, सारी शिक्षाओं को पूर्ण करने पर भी प्रेम के पाठ कुछ अभाव रह गया, इसलिए प्रेम के पाठ सिखाने को विश्व संसार को यह संदेशा देने के लिए कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। जबकि उद्धव जी ब्रज में गए हैं, उस समय ब्रज की क्या स्थिति थी? जब नंद बाबा उनसे मिले, उद्धव जी एक एक करके देखा है, जहां 3 महीने तक ब्रजवासियों ने ब्रजगोपियों ने पानी तक नहीं पिया तो खाना पीना बहुत दूर की बात। अभी अभी आपने सुना है, जबकि नंद भवन के चूल्हे में आग नहीं जली, घर में झाड़ू नहीं लगा, मकड़ी ने जाल बुन दिया और धूल मिट्टी से भरा हुआ है, यशोदा मैया मुंह के ऊपर से कपड़ा ढक ली, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, जब तक मैं उनको नहीं देखूंगी, तब तक मुझे दूसरी दुनिया के और कोई चीज नहीं देखने का। इस प्रकार नंद बाबा को अंधे बन करके बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ उद्धव जी पहुंचे हुए हैं, नंद बाबा सामने आए, कुछ बोलना चाहा, बोल भी नहीं सके। उस समय पर कृष्ण का स्मरण करते ही बड़े व्याकुल होकर रोते है, रोते रोते इतने व्यवहार बोला नहीं जा रहा है। बड़े मुश्किल से कहा, हमारे भैया बसदेव जी कुशल से हैं, देवकी जी कुशल से हैं और मथुरा वासी सब कुशल पूर्वक तो हैं। इतना कहते कहते हमारा कन्हैया कैसे, इतना कह करके व्याकुल होकर के रोते। उद्धव जी उन्हें सांत्वना देने के लिए बहुत सोच विचार करते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, सारी ज्ञान की गठरे खुल गई। उस समय बड़े मुश्किल से कहा, नंद बाबा, बाबा आप तो बड़े सौभाग्यवान हैं, कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, वे आपके हृदय में हैं, आपसे तो दूर नहीं, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। इतना कहते ही नंद बाबा बोले, अरे उद्धव तुम क्या कहते हो, इस तरह की बातें, मुझको तुम सौभाग्यवान बतलाते हो, मेरे जैसे दुर्भागा को, मैंने एक बालक को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया, मैंने तो कभी कृष्ण को भगवान नहीं समझा, न कि परमेश्वर समझा, मैंने अपना बालक समझा और तुम उसको भगवान कह रहे हो, तुम्हारे भगवान को पा करके मैं आज खो बैठा, मेरे जैसे और दुर्भागा कौन होगा। इतना कहते कहते और भी बेकुल होकर रोने लगते। उस समय वे बोले, यदि पिता है तो संसार में एकमात्र दशरथ महाराज, जिन्होंने हराम कहा तो उनके प्राण पखेर उड़ गया, परंतु आज तक मेरा प्राण तो निकला नहीं, कृष्ण कहते हुए अभी तक इस शरीर से तन से प्राण नहीं निकला, अभी भी जीवित हूं। इतना कहते कहते कृष्ण की सारी बात करने लगे, उद्धव इस घर में बाहर में कहीं भी एक मिनट के लिए मैं चैन नहीं ले पाता हूँ। हमेशा कृष्ण का स्मरण आता है, घर का एक एक ईंट एक एक कण भी हमें कृष्ण का याद करा देता है। मैं कैसे उनको भूलूं? वृक्ष का ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसे कोई वृक्ष नहीं, ऐसे कोई पहाड़ पर्वत नदी किनारा ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कृष्ण नहीं गए हो, नहीं बैठे हो, नहीं खिले हो। आज सभी को याद करा देता है। इस प्रकार नंद बाबा कहते हुए बोले कि बचपन से कितनी सारी विपत्तियां आई, उन सभी विपत्तियों में उन्होंने हम सब की रक्षा की, परंतु आज उनके विरह रूपी समुद्र में डूबकर इससे मैं निकल नहीं पाता। इस प्रकार नंद बाबा के इस बेतुलता में उद्धव जी तो कुछ बोल भी नहीं सके, केवल उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात दूसरे दिन जब की स्नान करके रात में बैठकर उद्धव क्यारी वन में पहुंचे, जहां गोपियां कृष्ण के विरह में पड़ी हुई हैं, उस समय उद्धव जी को देख करके कुछ गोपियां सामने आई, बोले कि अरे ये कौन है, ये तो कृष्ण नहीं है, देखने में कृष्ण जैसा तो लगता है परंतु कृष्ण तो नहीं है, ये और कोई दूसरे हैं, निश्चित रूप में कोई कृष्ण का प्रिय अनुचर है, कोई संदेश वाहक है, निश्चित रूप में कृष्ण का कोई संदेशा दे सकते हैं। तब गोपियां बोले कि हे कृष्ण के अनुचर, अरे आप क्यों आए हो यहाँ, हे उद्धव अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें जाना है पिता माता के पास में, उनको सांत्वना दो, उन्हें सांत्वना देने से वे धैर्य धारण करेंगे, यहाँ पर तुम क्यों आए हो, यहाँ तो तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। प्रेम संसार में प्रेम होता है दो प्रकार के, एक निरुपाधिक प्रेम, दूसरा है सोपाधिक प्रेम। जहाँ सोपाधिक प्रेम, जहाँ अपना स्वार्थ होता है, अपना मतलब होता है, वहीं पर एक दूसरों को प्रेम दिखाता है, नहीं तो जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाता है वहां पर कोई प्रेम प्रीति प्यार नहीं रहता है। अतएव हे उद्धव तुम बताओ हमने कौन सा दोष किया, हमने बचपन से ही कृष्ण को प्यार किया, उनको खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की, उनके सुख उनके प्रतिविधान को हमने जीवन में देखा, अपने सुख के लिए तो कभी कोई अभिलाषा तक हमने नहीं की, परंतु हमने कौन सा दोष किया जो कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। उस समय गोपियां कृष्ण के कैशोर बाल्य लीला का स्मरण करके विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। ऐसे समय में जबकि गोपियों ने उद्धव को साथ में लेकर के चला, बोले कि चलो राधा जी की स्थिति का तो दर्शन तो कर लो, आज वे स्वामिनी जी कैसे विरह दशा में पड़ी हुई है एक बार तुम देखो। जहां गोपियों ने राधा जी को फूलों के सेज में जमीन पर सुला दिया और फूल से मिल करके राधा जी का शरीर इतना छीन बना हुआ कि फूलों के साथ में मिल के एक बन गया है, उस समय राधा जी अंतर दशा में पड़ी हुई बड़ी व्याकुल में उनको कोई बाहरी सुध बुध नहीं, जहां उद्धव जी जाकर उन्हें प्रणाम करके कुछ ही निकट में बैठ जाया करते हैं। ऐसे समय में कोई एक काला भ्रमर आया, जिस भ्रमर को देख करके राधा जी तो देख भी नहीं रही है, मन ही मन उनके गुंजन को सुन करके अंतर भाव में डूबी हुई दीपोन्माद में राधा जी कहती है, राधा जी विरह ध्यानती अंग संगमम, कृष्ण मिलन की चिंता करती हुई राधा जी उस समय विरह में व्याकुल होकर के उस भ्रमर को कहती है, अरे भ्रमर तुम यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ से तुम चले जाओ। क्यों हमें मनाने आए हो? क्यों तुम्हारी क्या जरूरत है? इसलिए यहाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मधुबन किताब बंद मृषांग्री सपतना कुछ बिलुली तो माला कुंकुम शस्त्र बहतु मधुपति मारिणी नाम प्रसादम यदु सदस्य विरंबम जस दूत स्तमित्री। हे मधु, तुम जैसे कपट हो तुम्हारे प्रभु भी वैसे ही कपटी हैं, धूर्त हैं, छल हैं। हम लोगों के साथ में कैसे छलपूर्ण व्यवहार किया, आज हमें छोड़ दिया है, और कैसे कपट व्यवहार किए हैं? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हमें तुमसे कोई जरूरत नहीं है। क्या एक माननी को मनाने के लिए ऐसे ही आया जाता है? आना है तो तुमने ऐसे क्यों शराब पिया और मुंह में गुलाल क्यों, गोफों में गुलाल क्यों लगा करके आया? ये कुमकुम क्यों लगाया? इस तरह से राधा जी माननी हो करके रूठ करके बहुत सारी बातें करती हैं और अंत में यह कहती हैं, भ्रमर तुम यहाँ से जाओ। तुम क्यों बार बार मनाते हो? तुम्हारे प्रभु से कोई संधि वार्ता तो हो ही नहीं सकती। क्या मैं मथुरा में जाऊं? यह तो संभव नहीं। गोपियां वृंदावन में हैं, कृष्ण मथुरा में हैं, परंतु मथुरा वृंदावन की दूरी केवल इतना ही है, बीच की एक रेखा मात्र मानी जाएगी। परंतु गोपियां जिस भाव राज्य में डूबी हुई है वहां से तो हजारों मील दूर है, इसलिए गोपियां कैसे जा सकती हैं? यह तो संभव नहीं। उस समय राधा जी कहती हैं, वहां जाकर के मैं करूं क्या? श्री वधु साधु वास्ते लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्ष स्थल में विराजमान रहती हैं। जब कोई होती नहीं तो उस समय वधु बन करके उनके बाएं तरफ बैठ जाती हैं। वहां जाकर के मुझे सौतेन भाव आ जाएगा, तो मैं जाकर के करूं क्या? क्या यह बताओ, अभी भी कहां प्रियतम? क्या मथुरापुरी में है या और कहीं दूर चले गए हैं? यदि होंगे तो अवश्य कभी लौट के आए। क्या कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं, ब्रजजनों का स्मरण करते हैं, पिता माता का स्मरण करते हैं, कभी सखाओं का गायों के लिए कभी स्मरण करते हैं? कभी ऐसा भी कहते होंगे कि मथुरा की जबकि नागरियां महिलाएं जबकि उनकी सेवा करती हैं, तब तो ऐसा तो कहा करेंगे कि देखो तुम लोग जिस प्रकार से सेवा करती हैं, ऐसे बचपन में ब्रज गोपियां सेवा करने का प्रयास करती थी परंतु वे कर नहीं पाती थी, क्योंकि गांव की गुमारिया वो कहां जानती इतनी कलाएं इतनी परिपाटी। कभी ऐसा भी कहा करते यह सारे दुनिया में घूम करके जहां कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिले, कहीं गोपियों की जैसी सेवा नहीं मिले, तब सब को छोड़ करके क्या वे कभी यहाँ लौट के आएंगे? और किं करिणाम भुजम अदुरु मूर्धन धास्यत कदानु, इन तीना दासियों के मस्तक पर अदुरु सुगंधित तो भुज जुगल अर्पण करेंगे, क्या कि वे कभी लौट कर आएंगे? ऐ दीन दयात्र ना, हे मथुरा ना, कदा वो लोक हृदयम तदा लोक कातरम दैत धामति किम करो। ऐ दीननाथ, हे दीननाथ, दिनों के प्रति आप तो दया करने वाले हैं, हम जैसे विरहिणी दिनों के प्रति क्या आपका अनुग्रह होगा? फिर कभी आप लौट के आएंगे? आप तो मथुरा नाथ हैं, यदि वृंदावन नाथ होते तो अवश्य वृंदावन में लौट के आते। अब तो आप मथुरा नाथ बन गए हैं, अब कहने का कोई अधिकार नहीं रहा। कदा वो लोक कैसे, क्या कभी जीवन में ऐसा दिन आएगा कि आपका दर्शन फिर से मिलेगा। हृदय तदा लोक का हे प्राण प्रियता हे श्याम सुंदर, तुम्हारे अदर्शन के तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय अतिशय कातर हो रहा है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब इस समय मैं क्या करूं। इतना कहती हुई राधा जी मूर्छित हो जाती है। उस समय सारी गोपियां रोने लगती थी। उद्धव जी से कहती है, उद्धव यदि कोई संदेशा लेकर के आए हो तो क्यों नहीं बताते हो, बताओ, देखो ना राधा जी की क्या दशा है, क्या स्थिति है। उस समय उद्धव जी ये प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, अहो विरहे नमे महाभागा महान में अनुग्रह, हे महाभाग्यवती गोपियों, मैं अब क्या कहूं, आपका आप लोगों का इतना महान प्रेम, जिस प्रेम हिमालय के जैसा, और मैं एक सामान्य तुच्छ बालक, वह तो मैं सिर ऊंचा करके देखते देखते मैं थक गया, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। कृष्ण ने जो संदेश दिया उससे तो आपको कोई सांत्वना भी नहीं हो सकती, मैं अब क्या कहूं, आपने इस प्रकार मेरे प्रति परम अनुग्रह किया है, ऐसा महान प्रेम न भूतो न भविष्यति न कभी हुआ है न कभी हो सकता है, मैंने तो जीवन में पहली बार अनुभव किया। इस प्रकार कृष्ण के कुछ संदेशा सुनाए, जो कि कृष्ण ने कहा, हे ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारे मन में प्राण में हृदय में सर्वत्र अवस्थित हूँ, केवल यदि विरह है तो शरीर से है, मैं मथुरा में हूँ और तुम लोग वृंदावन में हो, तुम्हारा मन मेरे पास में पड़ा हुआ है और मेरा मन तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, इसलिए मन से तो कोई विच्छेद नहीं, यह शरीर का विच्छेद अति शीघ्र ही हम लोग दोनों मिलेंगे। ये और एक बात देखो, देखो दो शरीर एक साथ में मिलता है और उस समय दोनों का मान अलग अलग हो जाता है, क्या वो मिलना श्रेष्ठ है या दोनों का मान एक जगह मिल जाए वह श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसी सारी ज्ञान की बातें सुनाई। परंतु गोपियां बोली, उद्धव क्यों तुम हम लोगों को बार बार पीड़ा देते हो, इसको सुन करके और भी रोष बढ़ जाता है, इसलिए इस नीम के रस को तुम जो ज्ञान की गठरी को ले आए हो, इस नीम रस को तुम पेटारी भर करके मथुरा में ले जाना, वहां के नागरिकों को पिलाना, बेसब पिए हमें जरूरत नहीं है, सैकड़ों जन्म तक तुम्हारे कृष्ण के विरह में हम रोती रहे और हम मरती रहे, हमें वही अच्छा है, विरह अच्छा है, परंतु ऐसे हमें इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जबकि गोपियां आंख मूंद करके अंतर दशा में कृष्ण के लिए अनुभव करती है, अंतर हृदय में तो दर्शन करती है, उस समय उद्धव जी को लेकर के चले और जाकर के नंद भवन में भोजन बना करके उनको खिलाया पिलाया। उस समय गोपियां विरह उन्माद में, राधा जी उन्मादिनी हो करके डूबी हुई है, कृष्ण उद्धव को सारे ब्रजभूमि का कृष्ण लीला के स्थानों का दर्शन कराया। उद्धव जी उस समय ब्रज गोपियों के इन भावों को दर्शन करके प्रार्थना की, एता परम तनुभृत भूमि गोप बद्ध गोविंद एव निखिला मनि रूढ़ भाव वांछन्ति जाद भव भियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस। अब संसार में जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रजगोपियों का है। निखिल आत्मा गोविंद सबके हृदय में है, परंतु कितने लोग उनको प्यार करते हैं। जैसे ब्रजगोपियों का रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव दिव्य अनुवाद ऐसा तो और कहीं देखने को नहीं मिला। ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मा शंकर रुद्र इंद्र आदि सभी देवता लोग, हम सभी लोग उस भाव के एक कर्ण को प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे ब्रजगोपियों के चरण धूलि पाने के लिए ब्रज भूमि में लता गुल्म हो करके मेरा जन्म हो जाए। अंत में वे वही प्रार्थना करते हैं कि ब्रज गोपियों की एक चरण धूलि हमें प्राप्त हो। जो प्रेम, जो भाव, जो कथाएं सारे संसार को पावन किया करती हैं, उन्हीं कथाओं को हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उन ब्रज गोपियों के चरण धूलि की हाँ वंदना करते हैं। आज मैं इन्हीं वक्तों के साथ में यहीं पर आपसे क्षमा चाहूंगा। अभी गुरु जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे।
उद्धव जी
का कुछ वृतांत आप लोगों ने सुना। प्रेम के दो पहलू बतलाए, एक कृष्ण के हृदय में गोपियों के लिए प्रेम है और गोपियों के हृदय में एक प्रेम है कृष्ण के लिए। गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इसका वैशिष्ट है। आंशिक रूप में कृष्ण में है प्रेम, आंशिक रूप में, और प्रेम परिपूर्ण रूप में विरह और मिलन दोनों में गोपियों का शेष। हम लोगों ने इसका बहुत दूर से दिग्दर्शन मात्र करा है शाखा चंद्र न्याय से। ओ अभी देखो इस खिड़की के ऊपर में चंद्र उदित हो रहा है। चंद्र तो खिड़की के ऊपर में नहीं उदित हो रहा है, यहाँ से तो करोड़ मील दूर है। ऐसे मैंने या हम लोगों ने शाखा चंद्र न्याय से कृष्ण लीला का और विशेष करके प्रेम का हमने कुछ दिग्दर्शन मात्र किया, स्पर्श भी नहीं किया। आगे यदि समय मिलेगा तो इसके संबंध में कुछ कुछ हम लोग वर्णन करेंगे। आज यहीं तक हम कथा समाप्त करेंगे। ये देश विदेश से जो आए हैं देख रहे हैं, हमारे शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है। इनमें से कुछ कुछ लोग हिंदी भी बोलना सीख लिया है। भागवत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सबके ये पारंगत लोग हैं। अभी पहले एक कीर्तन करके तब 2 मिनट इनका सुन करके हम सभा का आज यहीं पर समाप्त मन रोल आगे।
जय जय श्री राधे। ओ मन डोलावे ना सखी मेरो श्याम बिना मन डोलावे ना। ओ मन डोलावे ना सखी मेरो श्याम
करेंगे होली का अनाउंस कर दीजिएगा, होली खेले फूल आए बहुत सारे।
Oh, pan khat suno na je.